الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سردیوں کا زمانہ چل رہا ہے ابھی سردیاں مزید اور شدت پکڑنے والی ہیں اس حوالے سے کچھ احکام ہیں جن کی طرف تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ذہن میں ہوتے ہیں معلوم ہوتے ہیں لیکن بر وقت یاد نہیں آتے اس وجہ سے کوتاہی ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا اس واسطے کچھ چیزوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے بلکہ غیر مسلم بھی یہ جانتے ہیں کہ نماز کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے مسلمان تو جانتا ہی ہے کہ ہر مسلمان پر جو بالغ مرد و عورت ہیں ان پر 5 نمازیں اللہ پاک نے فرض فرمائی ہیں اور اس کو اسلام کا ستون فرمایا ہے سردیوں کے زمانے میں یہ جو اسلام کا یہ جو فرض ہے اس کے اندر کوتاہی کی طرف ذہن اور مزاج چلنے لگتا ہے طبیعت چلنے لگتی ہے عشاء کے وقت میں مسجد کا آنا مشکل ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے فجر کے لیے مسجد کے اٹھ کر کے جانا یہ مشکل ہو جاتا ہے گھر میں اٹھ کر ویسے ہی بر وقت اس کو نماز پڑھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے ہم اگر پڑھ بھی لیں تو بچوں کو اس پہ ڈالنا ہوتا ہے ایک مستقل کام ہے گھر والوں کو اس کا عادی بنانا ہوتا ہے ایک مستقل کام ہے اتنی اہمیت ہے نماز کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفری ترک الصلاۃ کہ ایک بندے اور کفر کے درمیان فرق اور فصل کرنے والی چیز وہ نماز ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ کفر سے دور ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کفر سے قریب ہے بین العبد و بین الکفری ترک الصلاۃ اسلام سے نماز کا ایسا گہرا رشتہ ہے کہ جو نماز کے اندر کوتاہی کرے عملی اعتبار سے وہ جس کو نماز کے پڑھنے اور نہیں پڑھنے کا میں زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا ہو وہ فرمایا گیا کہ بڑی ڈرنے کی چیز ہے کہ یہ کفر سے قریب کرنے والی چیز ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترک الصلاۃ صلاۃ مکتوبۃ متعمدا جان بوجھ کر کبھی کوئی نماز نہ چھوڑنا فرض نماز نہ چھوڑنا ومن ترکہا متعمدا فقد برئت منہ الذمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیا جس سے فرض نماز چھوڑ گئی حالانکہ وہ اس کو پڑھ سکتا تھا تو آپ نے فرمایا اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا وہ اللہ کے ذمے سے نکل گیا آپ کو پتہ ہے کہ ہر حکومت کے اس کی رعایا پر کچھ حقوق ہوتے ہیں دنیا کے ہر ملک میں جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے ہی ایمان لانے والوں کے واسطے بھی اللہ پاک کی طرف سے کچھ حقوق محفوظ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترکہا متعمدن نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا اپنے آپ کو یہ جو اللہ کے پاس حقوق محفوظ ہے اس سے نکال لیتا ہے اس کے بعد اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے محفوظ ہے یا نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے نہر ہو اور وہ اس نہر میں 5 دفعہ غوطہ لگاتا ہو نہاتا ہو تو جیسے اس نہر 5 مرتبہ دن میں نہر کے اندر جاری پانی کے اندر غسل کرنے والے کے بدن پر کوئی میل نہیں ٹھہر سکتا ایسے ہی 5 نمازیں پڑھنے والے کے اوپر گناہوں کا گناہ صغیرہ کا بار نہیں ٹھہر سکتا ایسے ہی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حافظ علیہا 5 نمازوں کی جو پابندی کرے گا کانت لہو نوراً یہ اس کے لیے نور بن جائیں گے اور برہاناً یہ اس کے لیے دلیل بن جائیں گے نشانی بن جائیں گے وہ نجاتاً اس کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے قیامت کے دن آدمی کو پل صراط جو پار کرنا ہے वो अंधेरियों के आलम में पार करना है, वहां उजाला ही उजाला होगा, नहीं अंधेरियों में, वहां काम आएगा ईमान का नूर। जिसके पास जितना ईमान होगा वो उतनी रोशनी में होगा, जिसके पास जितना ईमान होगा वो उतनी रोशनी में होगा, और जिसके पास जितनी ईमान की कमजोरी होगी वो उस कदर जुल्मत और अंधेरे में होगा, उसके लिए पुल सिरात पर से गुजरना उतना ही मुश्किल होगा। आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन की जो तारीकियां होंगी उन तारीकियों में नमाजों की ये पाबंदी नूर बन करके सामने आएगी। आज हम जो नमाज पढ़ रहे हैं हमारे लिए ये एक अमल है, लेकिन ये अमल कैसा है? ये अमल ऐसा है जैसे माचिस की जो तीली होती है, तीली के ऊपर मसाला लगा हुआ होता है। मसाला क्या है? मसाला आग है, लेकिन उसको जब घसा जाएगा तब पता चलेगा उसके अंदर आग है। ऐसे ही हम जो नमाज पढ़ रहे हैं वो नमाजों की हैसियत क्या है, उनकी मिसाल क्या है, उनकी हकीकत क्या है? उनकी हकीकत है नूर। और नूर का पता कब चलेगा? जैसे यहाँ माचिस की तीली को घसने के बाद पता चलता है कि इस मसाले में आग है, वैसे ही कियामत की तारीकियों में पता चलेगा था कि इन पता चलेगा कि इन नमाजों में नूर है, इनके अंदर रोशनी है, इनके अंदर लोगों को लेके चलने की सलाहियत है, रास्ता दिखाने की सलाहियत है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कियामत की अंधेरियों में रोशन करने वाली चीज़ है, आदमी को रास्ता दिखाने वाली चीज़ है, रोशनी बन जाने वाली चीज़ है। फरमाया व बुरहानन, नमाजों की पाबंदी ये बुरहान है, दलील है। किस बात की दलील है? कि ये बंदा अल्लाह का फरमाबरदार है, इसकी दलील है। व नजातन, और ये आदमी के आखिरत में अल्लाह के अजाब से बचने का जरिया है। और दूसरी तरफ जो नमाजों का छोड़ने वाला है, फरमाया गया कि जिसने एक नमाज को जानबूझ करके छोड़ दिया वो एक हकब तक जहन्नम में रहेगा, एक हकब तक जहन्नम में रहेगा। एक हकब की जो मिकदार बताई जाती है वो 80 साल से भी ऊपर है, 80 साल से ऊपर है, और वहां का साल मुराद है आखिरत का साल। अब एक एक आयत के मुताबिक एक दिन वहां का जो होता है वो 1,000 साल के बराबर होता है, और एक और आयत के मुताबिक वहां का जो दिन होता है वो 50,000 साल के बराबर होता है। तो अब ये 80 सालों को वो 50,000 सालों में फिर आप कन्वर्ट कर लीजिए, फिर अंदाजा हो जाएगा। यानी दुनिया के हिसाब से 50,000 साल जो बनते हैं वो 80 सालों में उसको मल्टीपल करना पड़ेगा, तब जाके फिर अंदाजा होगा कि एक नमाज को छोड़ने के लिए इतने दिन तक जहन्नम में सजा भुगतना होगा। इल्ला है कि अल्लाह पाक किसी पर मगफूर, किसी के लिए बख्शिश का फैसला फरमा दे, किसी को माफ़ फरमा दे, लेकिन जो कानून है, जो सजा इसकी तय की गई है वो ये बताई गई। और फरमाया गया बैन अलाब्दी व बैन अलकुफ्र तर्कु सलाह, कि नमाज के पढ़ने नहीं छोड़ने के बीच और बंदे के बीच में जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो कुफ्र के बीच जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज का छोड़ना है। जो नमाज पढ़ने वाला है वो कुफ्र से दूर है, जो नमाज नहीं पढ़ने वाला है वो कुफ्र से करीब तर है। इसलिए पांचों नमाजों का अपने आप को आदि बनाना है, एहतमाम करना है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, और अपने बच्चों को भी इस पे डालना है। क्योंकि जैसे हम बच्चों के खाने पीने का, बाहर जाते हुए जो लिबास बाहर के पहनने का है उसके पहनने का, जैकेट पहने नहीं पहने पहने, सॉक्स पहने नहीं पहने, गर्म टोपी पहने नहीं पहने, मफलर साथ में लिए नहीं लिए, इसका जैसे एहतमाम करते हैं, बच्चों को हम जैसे तालीम दिलाते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा इन दीनियात पे और दीन के फराइज़ पे बच्चों को डालना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता हमने दुनिया की जिम्मेदारियों में कोताही की तो दुनिया का नुकसान होगा, लेकिन अगर दीन के उमूर में आखिरत के मामलों में कोताही की तो आखिरत का नुकसान होगा। वल आखिरत खैरुन व अबका, और दुनिया के मुकाबले में आखिरत वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही पायदार चीज़ है, वहाँ का नफ़ा भी उतना ही पायदार है, वहाँ का नुकसान भी उतना ही ज़्यादा है। इसलिए दीन की जिम्मेदारियों के अंदर भी बच्चों के लिए उतनी ही उससे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है जितनी जितनी फिक्र हम दुनिया के उमूर के लिए, दुनिया के कामों के लिए उनकी करते हैं। तो एक तो है नमाजों के लिए ज़्यादा फिक्र करना, क्योंकि मौसम की वजह से तबीयत उस तरफ सुस्त चलती है, और दूसरी चीज़ है जमात का अहतमाम करना, मर्द हजरात का मस्जिद आकर कर या मुसल्लों को जा कर के, जहाँ नमाज बाकायदा जमातें होती हैं वहाँ पर जाकर नमाज अदा करना। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुल जमाअति तफ़ज़ुलु सलातल फ़र्दि बी 27 दरजतन। अब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बा जमात नमाज का सवाब तन्हा नमाज पढ़ने से 27 गुना बढ़कर है, 27 गुना ज़्यादा बढ़कर है। ये फरमाया, यानी एक बंदा तन्हा नमाज पढ़ता है और एक बंदा जमात के साथ नमाज पढ़ता है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने तन्हा नमाज पढ़ी है उसको मल्टीपल कर लो 27 टाइम, ये बन जाएगा फिर जमात का सवाब। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ दफ़ा नाराज़गी का इजहार फरमाया उन लोगों पर जो बग़ैर किसी उज़्र के जमात को तर्क कर देते हैं। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं यहाँ पर यानी मस्जिद नबवी में लोगों को मुअज़्ज़िन को हुक्म दूँ कि अज़ान दें, फिर उनको किसी को हुक्म दूँ कि भाई तुम नमाज़ पढ़ाओ, और फिर मैं खुद क्या करूँ, मैं जाऊँ उन लोगों के पास में जो नमाज को नहीं आते यानी जमात में हाजिर नहीं होते और उनके घरों को जला दूँ। ये नाराज़गी का इजहार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, नमाज के छोड़ने पर नहीं, जमात के छोड़ने पर। तो सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा इस तरफ तबीयत कम चलती है, हमको ये वईदें जहन में रखने से तबीयत आमादा हो जाती है कि नहीं भाई ये बड़ी सख्त चीज़ है, इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, इसके अंदर कोई मुसालाहत कोई सुस्ती नहीं करने का है, यहाँ पे पूरा पूरा अपने आप को पाबंद और एक्टिव होके चलने का है। सहाबा किराम का माहौल कैसा था? फरमाया गया कि सहाबा के दौर में अगर कोई मस्जिद को जमात के लिए हाजिर नहीं होता था तो आम तौर से दो रीज़न होते थे, या तो ये कि वो बंदा बीमार है यानी इतना बीमार है कि वो चल के नहीं आ सकता, चलना उसके लिए दुश्वार है, और दूसरा रीज़न ये होता था कि लोगों को पता होता था ये नहीं आने वाला मुनाफिक। कोई बंदा अगर तंदुरुस्त है और फिर उसके बाद भी वो जमात में हाजिर नहीं हुआ तो वो इस बात की निशानी होती थी कि वो बंदा मुनाफिक है। खुदा ना खास्ता अगर इस बात को आज के ज़माने में अप्लाई करना शुरू किया जाए तो फिर कौन कौन इसकी जद में आ जाएगा कहा नहीं जा सकता। बहरहाल ये इतनी अहमियत की चीज़ है इस्लाम में, एक तो नमाज भी और नमाज के साथ मर्दों के लिए जमात भी, ऐसी सुन्नत है जो वाजिब से करीब तर है। जैसे वाजिब के छोड़ने से बंदा गुनहगार होता है, बगैर उज्र के जो इसको छोड़ने की आदत डाले वो बंदा भी गुनहगार हो जाता है, और ऐसा गुनहगार होता है कि उसको फासिक का लेबल लगता है साथ में, फासिक का टाइटल लगता है उसको साथ में। फासिक का क्या हुक्म है कि फासिक को शरीयत में ऐसा दर्जा हासिल है कि उसको गवाही के काबिल नहीं समझा गया, और मैं कहा फासिक की गवाही कबूल नहीं है, तो वो उस जुमरे में उस कैटेगरी के अंदर बंदा चले जाता है इस किस्म के गुनाहों के करने की वजह से। तो जमात का भी एहतमाम करना है। इसी मौसम से ताल्लुक रखने वाले दो चार मसाइल और भी हैं, क्योंकि जमात की काफ़ी फजीलत आई है। तो अब होता यह है माशरे के अंदर कि कभी कोई आया है बंदा देर से आया है तो अब वो कोशिश करता है कि जमात सानिया का दूसरी जमात का हम एहतमाम कर लें। अहनाफ के नज़दीक इसके अंदर बल्कि दूसरे और अइम्मा के नज़दीक भी जमात सानिया में इस कदर सहूलत नहीं है जैसे कि जिस सहूलत से हम इसको अदा कर लेते हैं हुक्म के एतबार से, ये मकरूह है। यानी एक बंदा हम एक इबादत वाला काम कर भी रहे हैं और फिर उसको मकरूह उसके कराहत उसके अंदर शामिल कर रहे हैं, यानी मकरूह होने का मतलब होता है उसका सवाब कम हो जाना। तो एक इबादत का काम हम करना चाह रहे हैं लेकिन इस हैसियत से कि हमें उसका सवाब कम मिले, ये क्या अकलमंदी हुई? ये इस वजह से होता है यानी ये सोचकर ये किया जाता है कि जमात का सवाब ज़्यादा है लिहाजा हम जमात से नमाज पढ़ना चाहते हैं, पहली जमात का सवाब है वो दूसरी जमात का नहीं है। जमात की जो मसलहत है वो क्या है? वो सारे लोग इकट्ठे होकर अल्लाह की इबादत करें। ये एक से दो, दो से तीन, तीन से चार जमातों का जहाँ पर सेटअप शुरू हो जाता है ना वहाँ पर ये अहमियत और ये मकसद व हिकमत फौत हो जाता है, छूट जाता है। लोग बोलते हैं कि अगर क्या हुआ अगर जमात छूट भी गई तो जाकर दूसरी बना लेंगे, दूसरी छूट गई तो तीसरी बना लेंगे, तीसरी छूट गई तो चौथी बना लेंगे, वरना नमाज का वक्त शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक 6-7 जमातें हो रही हैं मस्जिद के अंदर। ये थोड़ा सा करने वाला काम नहीं है, ये अप्रिशिएट करने वाला काम नहीं होता है, हौसला अफजाई वाला काम नहीं है, इसे एहतियात करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? आप वक्त से आए हैं, कोशिश करके आए हैं, मिसाल के तौर पर 1:30 बजे नमाज है और आप आए जमात छूट गई, इमाम साहब ने जल्दी नमाज पढ़ा दी, आपके पहुंचने में देर हो गई, रास्ते में ट्रैफिक था, कुछ मसला हो गया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा जमात की नीयत से घर से चले और आकर के देखे कि वो जमात छूट गई है तो जमात से नमाज पढ़ने वालों के बराबर अल्लाह पाक उसको अजर देंगे और ज़रा बराबर उसके अंदर कमी नहीं होगी। यानी जो बंदा तन्हा नमाज पढ़ रहा है लेकिन घर से जमात की नीयत करके निकला है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया चूंकि वो नीयत करके निकला है कोशिश उसने पूरी की है अल्लाह पाक अजर भी पूरा देंगे, ज़रा कमी नहीं करेंगे, ये वजाहत के साथ ये अल्फाज आए हैं। तो हम लोग जब नीयत की वजह से पूरा सवाब हमको मिल रहा है तो फिर हम लोग करा मकरूह काम करके कई को अपने नमाजों का सवाब हम क्यों कम करें भाई? इसलिए एहतियात करना चाहिए जमातों की कसरत से। हाँ बाज़ सूरतें वहाँ है वो हैं भी जायज़ हैं भी जिसके अंदर इजाज़त दी भी गई है, जमात सानिया की इजाज़त दी गई, आप सफ़र कर रहे हैं, एक मिसाल उसमें से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप सफ़र कर रहे हैं, आपका किसी मस्जिद से गुजर हुआ, वो मस्जिद में नमाज हो चुकी, आप एक कोने में जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहते हैं, उसकी इजाज़त है।
ऐसी जगह से आप गुजरे हैं, ऐसे मुसल्ले या मस्जिद से जहां पर इमाम और मुअज्जिन मुकर्रर नहीं है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, तो वहां से आप गुजर रहे हैं, वहां पर पढ़ने की इजाज़त दी गई। तो जमातों का अहतमाम तो करना है, लेकिन जमात सानिया से अपने आप को बचाना भी है, क्योंकि जब जमात की नीयत से घर से निकले हैं, जमात छूट भी गई, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक अजर दे दे। इसी से ताल्लुक़ रखने वाली एक और चीज़ है, सर्दियों के ज़माने में दो और मसाइल की तरफ हमको तवज्जो करना है। वो क्या है, उनमें से एक मसाला तो ये है कि जब हम नमाज के लिए, नमाज पढ़ने वाली मखलूक, जब यानी नमाज की तवज्जो फिक्र रखने वाली खलकत और उम्मत जब वुज़ू करने बैठती है, तो उसके लिए मुश्किल होती है। चेहरा धोना है, हाथ धोना है, मसा करना है, पैरों को धोना है, कभी पानी गर्म आ गया, कभी ठंडा आ गया, तो इसके लिए हुज़ूर पाक सल्लम ने शरीयत के अंदर अल्लाह पाक से जो अहकाम की रुख्सत हमको अता फरमाई है, उसमें से एक ये भी है कि अपने पैरों को हर दफ़ा धोना ज़रूरी नहीं है, हम खुफ़ैन पहन सकते हैं, हम लेदर सॉक्स पहन सकते हैं, कितनी बड़ी सहूलत है। जो हज़र में यानी अपने घर में और शहर में रहने वाला बंदा है, उसको लेदर सॉक्स पर मसाह करने की इजाज़त 1 दिन और 1 रात है, 24 घंटे तक, और जो सफ़र पर है उसको 3 दिन और 3 रात तक इसकी इजाज़त दी गई। और मसा अलल खुफैन इसको कहते हैं, खुफैन पर मसाह करना, लेदर सॉक्स पर मसाह करना, खुफ का मतलब होता है लेदर सॉक्स, ये जहन में रखें, मोज़ा नहीं, मोज़ा नहीं, खुफ का मतलब लेदर सॉक्स है अरबी में। मसा अलल खुफैन का जो हुक्म है, ये हुक्म अहले सुन्नत की निशानी है, यानी जो अहले सुन्नत से खारिज हजरात हैं वो इसको नहीं मानते, वो पैर पर मसाह करते हैं, शिया हजरात, वो कहते हैं कि मसाल खुफैन कोई चीज़ नहीं, हालांकि खुद हजरत अली रजी अल्लाह अनु से मसाल खुफैन की रिवायत मौजूद है। ये अजीब तो तमाशा है कि जिनको वो बड़े मानते हैं उनसे भी एक रिवायत मनकूल है, फिर भी वो उसको मानने तैयार नहीं है। तो ये मसाल खुफैन की जो रुख्सत हासिल है, ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा करम है हमारे लिए, इसमें बड़ी सहूलत है। लेकिन इसमें आकर जो गड़बड़ होती है वो ये कि जो सॉक्स लेदर के नहीं होते, उनके अंदर थोड़ा सा कंडीशंस हैं, थोड़े शराइत हैं, उन शराइत को पूरा करना ज़रूरी है मसा जायज़ होने के वास्ते, नमाज सही होने के वास्ते। अगर उन कंडीशंस की रियायत नहीं की गई और नमाज वज़ू करके नमाज पढ़ ली, इतना वज़ू हुआ ना, नमाज हुई, आपने इतनी मेहनत की, उसको ख़रीदा, उसको पहना, वज़ू किया, नमाज पढ़ी, एक नेकी भी नहीं मिली उसके इवज़ में, उल्टा गुना हुआ कोताही का, तो थोड़ा सा तवज्जो करने की ज़रूरत है। तो कैसे सॉक्स जो है, अगर लेदर के सॉक्स नहीं है तो फिर कैसे होने चाहिए, 3-4 बातों की उसमें उलमा ने शराइत जिक्र की है, उनको हम जहन में रखें। नंबर एक, हमारे जो एंकल्स हैं, टखने हैं, वो छुपाने वाले हैं, आमतौर से ये होता ही है। नंबर दो ये है कि वो इतने मोटे हों और ऐसे हों, यानी वो क्वालिटी ऐसी हो उसकी कि पानी उस पर छोड़े तो अंदर ना जाता हो, पैर को ना लगता हो। और नंबर तीन, वो ऐसे हों कि बंदा उसको पहने तो वो तंग होने की वजह से पैर को चिमट कर खड़े हों ऐसे नहीं हो, बल्कि आप उसको उतार कर अगर रख दें वैसे ही जमीन पर, तो वो खड़ा हुआ हो। जैसे लेदर सॉक्स, आप अगर आप उसको खड़ा रखें तो वो ठहर जाता है ना, ऐसे ही वो सॉक्स भी ठहर जाने वाले हों, और उसमें बिला तकल्लुफ आदमी उसको पहन करके ज़्यादा से ज़्यादा चल सकता हो, उसको पहन के चलने में कोई दिक्कत न पेश आती हो। तो ऐसे जो सॉक्स होते हैं, उन सॉक्स के ऊपर मसाह करने की इजाज़त दी गई। अब मार्केट के अंदर बाज़ इस लिहाज से बनाए गए बाज़ मोज़े मिल जाते हैं, बाज़ सॉक्स मिल जाते हैं, लेकिन उसकी तहकीक कर लेना, क्योंकि बनाने वाले ने तो थोड़ी बहुत रियायत की है पूरे मसलों की, वो आलिम थोड़ा ही है बनाने वाला जो पूरे पूरी शराइत की रियायत करेगा। इसलिए अगर कहीं ऐसा मिले तो फिर किसी को दिखा लें, मोतबर आलिम दीन को, मुफ्ती हजरात को बता लें, और फिर उसके हिसाब से अमल कर लें। उसके अलावा एक और चीज़ है इन दिनों के अंदर जिसकी ज़रूरत ज़्यादा पेश आती है, वो ये कि जॉब की वजह से, दूसरी और वजूहत से, तबीयत में सुस्ती की वजह से, या किसी और मशगूलियत की वजह से, लोगों का जहन चलने लगता है जमा बैन सलातैन की तरफ, दो नमाजें एक साथ पढ़ लें भाई, टाइम भी जो है ना एक साथ घंटे भर के अंदर वक्त आ जाता है। एक दफ़ा हमने जॉब से छुट्टी ली, फिर दोबारा छुट्टी लेने के लिए हमको हर्ज होता है भाई, दो दफ़ा पेशाब के लिए जाते नहीं जाते, दो दफ़ा किसी बलगम थूकने के लिए जाते नहीं जाते, जाते हैं। हमारी जब जैसी तबीयी ज़रूरतें हैं, उससे बढ़कर हमारी दीनी ज़रूरत है, इसमें सहूलतें हैं, उसको उनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जैसे हमारा जो वक्त है ना नमाज का, वो ऐसा नहीं है कि आधे घंटे का है उसके अंदर आपको निपटा देना है, गौर कर कि 3 घंटे का, 3.5 घंटे का टाइम हमको मिल रहा है, तो हम नमाज के अव्वल वक्त के अंदर एक नमाज के लिए 5 मिनट की छुट्टी लें, और दूसरे नमाज के लिए उसके आखिरी वक्त के अंदर छुट्टी ले लें, किसी को महसूस भी नहीं होगा कि आपने छुट्टी ली है। जॉब पे अगर हैं और वहाँ पर छुट्टी लेने में कोई दिक्कत पेश आ रही है, बस हमको फिक्र होना है कि ये काम हमको करना है, हमको हुक्मों पर चलना है। जो लोग फिक्र करते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए रास्ते खोल देते हैं, और ऐसे ऐसे रास्ते खोलते हैं کہ لوگوں کے واقعات سن کے حیرت ہوتی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اللہ کے حکموں پر چلنے کے دنیاوی فوائد کا، لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کاموں سے، اور یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کی جابوں پر بڑی سختی ہے، ورنہ تو لوگ جا کر کے جابوں کے اندر جو اپنے وقت کو جو کاٹ کر کے آتے ہیں، وقت پاس کر کے ٹائم پاس کر کے آتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو نماز بھی پڑھنا ہے، وقت پہ بھی پڑھنا ہے، کوشش اگر ہو سکتی ہے تو جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ جمع بین الصلاتین کا مسئلہ احناف کے نزدیک اتنا ایزی نہیں ہے جتنا کہ اس کو سمجھ لیا جاتا ہے، یا ہماری معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، کیونکہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، حنبلی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، تو ان لوگوں کے پاس بعض چیزوں میں سہولت ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم کو خیال آتا ہے کہ بھائی ہم بھی یہ سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم جب کسی امام کو مانتے ہیں تو ماننے کا تقلید کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی ان تشریحات پر مکمل اعتبار کرتے ہیں جو انہوں نے قرآن و حدیث کی تشریحات ہم کو بتائی ہیں، اور ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم پوری طرح قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے۔ جیسے کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی ہے، تو وہ بھی مقلد ہی ہوتا ہے، عامی بھی مقلد ہوتا ہے، جو عالم نہیں ہے وہ بھی مقلد ہے، جو عالم ہے وہ بھی مقلد ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ پھر فرق یہ ہوا کہ ایک تحقیق کے ساتھ میں مقلد ہے، عالم اور مفتی تحقیق کے ساتھ میں مقلد ہوتا ہے، اور جو عالم و مفتی نہیں ہوتا ہے وہ بغیر تحقیق کے مقلد ہوتا ہے، لیکن دونوں پابند ہوتے ہیں اپنے مسلک کی فالو کرنے کے۔ اور وہ فالو کرنا کیوں ہے؟ فالو کرنا اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے نفس کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ یہ سہولت اگر مل جائے نا، کہ دین کے اندر جو سہولت ہے، جس مسلک میں جو سہولت والا پہلو نکل رہا ہے اسے فائدہ اٹھا لو، تو پھر ہمارا دین دین نہیں رہے گا۔ ہمارا دین جو، یعنی ہم جس کو دین سمجھ کے حکم شریعت پورا کر رہے ہیں سمجھ رہے ہوں گے، وہ ہم اپنے نفس کی بات مان رہے ہوں گے۔ کتنے مسائل ایسے ہیں جس کے اندر جو ہے بندے گرفتار ہو جائیں گے اور پھر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، حالانکہ دین پہ نہیں، اپنے نفس کی اور دل کی باتوں پر عمل کر رہے ہوں گے۔ تو ہم کو اپنے امام کے، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیق ہے، اس تحقیق پر پورا اعتماد ہے، وہ اقرب الی السنہ ہے، وہ اقرب الی النصوص ہے، قرآن و حدیث کی مکمل اور قریب ترین تشریحات اس کے اندر ہیں، جو اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں وہ قرآن و حدیث سے انتہائی قریب ترین ہے، اور ہم کو اس پر پورا اعتماد ہے، اور ہم کو اس پر عمل کرنا اس واسطے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر اپنے نفس کے بندے بن کے رہ جائیں گے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ فصل و اعلی ذکر ان کنتم لا تعلمون، جب تم کو پورا پتہ نہیں ہے تو جو پتہ رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ان سے پوچھ کر کے چلو۔ اسی لیے عوام کا بھی یہ کام ہے کہ اپنے مسلک پر تسلق کے ساتھ جمے رہیں، اور علماء کا بھی یہ کام ہے کہ اپنے مسلک پر تسلق کے ساتھ جمے رہیں۔ اب تعالیٰ ان تمام مسائل پر عمل ہمارے لیے آسان فرمائے، ہم سب کو ہمت نصیب فرمائے، اور دین کی اور احکام کی فکر اور توجہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔